नमस्कार भारत, 25 सितंबर दिन रविवार, मैं हूं रेहान फदल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उड़ी में 18 भारतीय जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा।
उड़ी में हमारे पड़ोसी देश ने एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, ये देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नए गठबंधन की चर्चा, और न्यूज मेकर्स में आपकी मुलाकात कराएंगे भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान अनूप कुमार से।
हिंदुस्तान के जो टॉप प्लेयर्स हैं 14, वो इस वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुए हैं और बिल्कुल बैलेंस टीम है ये, ऑफेंस की तरफ से भी, डिफेंस की तरफ से भी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केरल के कोझिकोड में बीजेपी की रैली में पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया। उड़ी हमले के बाद अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि कश्मीर की बात करके पाकिस्तान के नेता वहां की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों से कहा कि भारत बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी और नवजात शिशुओं को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार है। देखें इसमें पाकिस्तान पहले जीतता है या हिंदुस्तान। केंद्रीय यूरोप और बल्कान देशों के नेता वियना में यूरोप में आने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर विचार कर रहे हैं और इस मुद्दे का साझा समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। नेताओं में इस बात पर सहमति बन गई है कि यूरोपीय यूनियन को अपनी सीमाओं पर नियंत्रण बहाल करना होगा। बैठक में जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन को अफ्रीकी देशों के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सहयोग चाहिए ताकि जिन प्रवासियों को यूरोप में रहने की इजाजत नहीं है उनको वापस भेजा जा सके। सीरिया के विदेश मंत्री वलीद अल मुअल्लम ने कहा है कि चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में सरकारी सेना को सफलता मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब जीत पर उनका विश्वास पहले से कहीं अधिक है।
وما يزيدنا ثقة بالنصر على الإرهاب هو الإنجازات التي يحققها
اب جب سیریا کے لوگوں کے سچے ساتھی خاص کر روسی فیڈریشن ایران اور لبنیز نیشنل ریزسٹنس کے سہیوگ سے سیریائی عرب آرمی کو چرم پنتھ کے خلاف لڑائی میں بڑھت مل رہی ہے تو ہمیں اپنی جیت پر اور بھی بھروسہ ہو گیا ہے۔ اس سہایتہ نے سیریا میں استھتی سامان کرنے اور لوگوں کے درد کو کم کرنے میں مدد کی ہے۔ ये थे सीरिया के विदेश मंत्री वलीद अल मुअल्लम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इधर सीरिया के शहर अलेपो में बिगड़ते हालातों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र संयुक्त सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की गुजारिश की है। उम्मीद है कि यह बैठक जल्द होगी। अमरीका के उत्तरी कैरोलिना में शहर शार्लोट में पुलिस ने एक काले व्यक्ति कीथ लमोंट स्कॉट की विवादित मौत के मामले में अधिकारी के शरीर पर और कार पर लगे कैमरे का वीडियो जारी कर दिया है। पुलिस ने एक हैंडगन यानी बंदूक की तस्वीर भी जारी की है जो पुलिस के अनुसार कीथ के पास थी। वॉशिंगटन पुलिस ने सिएटल के नज़दीक एक मॉल में गोलीबारी करने वाले बंदूकधारी शख्स की तस्वीर जारी कर लोगों से उनके बारे में सूचना देने को कहा है। पुलिस के अनुसार गोलीबारी के पीछे एक लातिन अमरीकी मूल के युवा का हाथ है जो करीब 20 साल के थे और काला शर्ट पहने हुए थे। अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आधिकारिक तौर पर अफ्रीकी अमरीकी इतिहास से संबंधित देश का पहला संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। केरल के कोझिकोड में एक रैली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी में हुई 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग करने के लिए वो मजबूर करेंगे। साथ ही उनका कहना था कि पाकिस्तान से अपना देश संभल नहीं रहा है। अपने करीब 40 मिनट के भाषण में उन्होंने पाकिस्तान पर पुरजोर हमला किया। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वह आतंकवाद का निर्यात करता है और ये बात दुनिया से छिपी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जोर लगाकर कहा कि आज के हुक्मरान आतंकवादियों के लिखे भाषण पढ़कर कश्मीर के गीत गा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को उनके पूर्वजों का हवाला देते हुए कहा कि 1947 से पहले आपके पूर्वज भी इसी संयुक्त धरती को प्रणाम करते थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं से पूछें कि जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे वो कश्मीर का राग क्यों अलाप रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा,
आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप गिलगित को नहीं संभाल पा रहे पर हो, आप पख्तूनख्वा को हमें संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो, ये तो आपके पास है। और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ।
नरेंद्र मोदी का कहना था कि उड़ी में हुए हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे कोई और, जब भी आतंकवाद की कोई घटना होती है तो थोड़े दिन बाद पता चलता है कि आतंकवादी या तो इसी देश से गया था या फिर घटना के बाद ओसामा बिन लादेन की तरह इस देश में आकर बसा था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश के निर्यात के चरमपंथियों के कारण हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा और चरमपंथी कान खोल कर सुन ले, ये देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है।
पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है, जम्मू कश्मीर में, उरी में, हमारे पड़ोसी देश ने एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा, आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है।
नरेंद्र मोदी का कहना था, वे लोगों बच्चों से कहना चाहते हैं कि आइए गरीबी अशिक्षा खत्म करें और नवजात शिशु और जन्म देने वाली माओं की मौत रोकने के लिए लड़ाई लड़ें और देखते हैं कौन जीतता है, हिंदुस्तान जीतता है या पाकिस्तान।
मैं आपको कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ, हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े, आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है, आप पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी।
करीब अपने एक घंटे के भाषण में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि केरल के लोग भी जानते हैं कि आतंकवाद क्या है। केरल की बेटियों को जब आतंकवादियों ने अपने कब्जे में लिया था, पूरा भारत तनाव में आ गया था, लेकिन सरकार ने केरल की बेटियों को उनके घर वापस लौटाया। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। जिस तरह के तेवर नरेंद्र मोदी के दिख रहे थे, उनसे किस तरह के संकेत मिलते हैं? हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार ज्योति मल्होत्रा से बात की।
जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली दफा किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे मुल्क की आवाम का जिक्र किया है और उनको ये कहा है कि आप अपने हुक्मरानों से जो है सवाल कीजिए। तो मुझे लगता है कि जो अभी हाल ही में जो उड़ी में भारतीय सेना के जो बेस पे जो अटैक हुआ है, वो जो हमला है, वो अभी भी प्रधानमंत्री के जहन में अभी भी काफी मंडरा रहा है। उन्होंने 2-3 दफा ये भी बात की कि ये जो 18 सैनिक मारे गए हैं वो मैं नहीं भूलूंगा और ये पूरा देश नहीं भूलेगा। तो ये जो दो बातें हैं कि एक तरफ भारत पे जो बार बार हमला होता है, और पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पिछले कुछ महीनों में 17 बारी हमले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादियों ने हमला किया है, और दूसरा जैसे आपने कहा कि एक दूसरे मुल्क की आवाम को आप कह रहे हैं कि आप जो है अपने ही नेताओं से पूछें और अपने ही नेताओं से सवाल करें। तो ये मुझे लगता है बहुत ही एक दिलचस्प बात प्रधानमंत्री ने कही। जाहिर है कि उनकी जो पूरी पाकिस्तान की पॉलिसी है उसको, उस पर पूरी दुनिया एक नजर रख रही है, और ये सवाल जो सबके जहन आज की तारीख में है कि क्या भारत इस उड़ी वाले हमले का जवाब देगा और किस तरह से देगा।
जी ज्योति, आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भारत सॉफ्टवेयर का निर्यात करता है तो पाकिस्तान चरमपंथियों का निर्यात करता है, और उनका कहना था कि विश्व में पाकिस्तान को अकेला रहने के लिए मजबूर करके रहेंगे। तो क्या इस बात से वो ये संकेत देना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरमपंथ के मुद्दे पर सभी राष्ट्र भारत के साथ हैं?
एक तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है भारत की तरफ से, खास करके उड़ी पे जो हमला हुआ है उसको सामने रखते हुए, और जिसपे भारत को कुछ सपोर्ट भी मिला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से। लेकिन दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ये भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद भारत में आ रहा है और इतने सालों से जो आतंकवादी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारत के अंदर आ रहे हैं, वहां पे भी जो है आवाम को और पाकिस्तान की फौज को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान फौज का नाम नहीं लिया, लेकिन एक जो बार बार उन्होंने कहा कि अपने हुक्मरानों से आप पूछिए, तो अब अपने हुक्मरानों से के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो जैसे एक जो चुने प्रधानमंत्री हैं आप उनसे पूछें। प्रधानमंत्री को ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान की आवाम की गलती नहीं है, इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि हमको एक ये कंपटीशन होना चाहिए हमारे बीच कि आप जो है बेरोजगारी खत्म करें, गरीबी खत्म करें, और देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान कौन पहले खत्म करता है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये जो 18 जवान मारे गए हैं इसको भारत कभी भूलेगा नहीं। तो ये एक कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जो संकेत करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो समझ भी गए हैं कि जब भारत जवाब देगा तो पाकिस्तान की आवाम को वो जवाब नहीं देना चाहता।
ये थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार ज्योति मल्होत्रा।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी में सैन्य कैंप पर हुए चरमपंथी हमले के बाद सेना के शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने बीबीसी से इस बात की पुष्टि की थी कि भारतीय सेना कश्मीर में भारी और मध्यम स्तर की आर्टिलरी तैनात कर रही है। हालांकि सेना के मुताबिक ये बर्फ पड़ने से पहले उसकी हर साल की तैयारी में शामिल है, लेकिन इस बार की तैयारी में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए नियंत्रण रेखा पर बोफोर्स गन्स, 105 मध्यम आर्टिलरी और अन्य तरह के उपकरण सीमा पर तैनात किए गए हैं। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने श्रीनगर में मौजूद रियाज मसरूर से पूछा कि अब नियंत्रण रेखा के पास क्या हालात हैं।
भारत में जो सेना होती है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के सबसर्वेंट होती है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मिलिट्री ऑपरेशन रूम में रहे और मीडिया में भी काफी छाया रहा कि एक उड़ी के हमले का जवाब दिया जाएगा, तो सेना जाहिर है, हमने जो सैन्य अधिकारियों से बात की उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शंस को वे कर रही थी, तो इसका मतलब है मोबिलाइजेशन करना था, सतर्कता को बढ़ाना था, और जो बड़े हथियार हमने पहले भी बताया है कि बड़े हथियारों को फॉरवर्ड पोजीशंस पे लिया गया था, तो पूरी तरह से सेना जो है किसी भी निर्देश पर अमल करने के लिए तैयार थी, और आज भी ऐसा ही है क्योंकि उड़ी तो बारामूला जिले में है, क्योंकि कल वहां एक युवक की मौत हो गई है, तो उसके बाद वहां ज्यादा टेंशन हो गए हैं, और पहले से ही जो एनकाउंटर हुआ था 18 तारीख को उड़ी में जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था, उसके बाद कोई 5 किलोमीटर की पट्टी को संवेदनशील जो है वो करार दिया गया था, और उसके बाद वहां पे सिविलियन मूवमेंट को बैन किया गया था, और आर्मी ने जो है अपनी मूवमेंट को बढ़ा दिया था और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, और इस बीच 2-3 इन्फिल्ट्रेशन बिट्स का भी दावा किया गया। तो इस तरह से जो यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो उड़ी हमले के बाद और खासतौर से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पाकिस्तान इसका दोषी ठहराया जा रहा है, तो उसके बाद यहाँ सतर्कता बहुत बड़ी है और जो सैनिक गतिविधियां हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे कि होती थी उससे बहुत ज्यादा है।
चरमपंथी बुरहान वानी की मौत के बाद जो एक तनाव की स्थिति वहां पर पैदा हुई थी, लोग सड़कों पर उतर आए थे, वहां पर कर्फ्यू लगाया जाता है, फिर कुछ देर के लिए हटाया जाता है, फिर वहां कर्फ्यू लगा दिया जाता है, तो ऐसे में अब करीब करीब 3 महीने हो रहे हैं ऐसी स्थिति को, लेकिन अब क्या ताजा हालात हैं?
ताजा स्थिति तो ये है कि यहाँ पे सभी जो आम गतिविधियां होती हैं वो ठप पड़ी हुई हैं, क्योंकि अलगाववादियों की तरफ से बंद बुलाया जाता है और 11 सप्ताह से एक भी दिन ऐसा नहीं है जब अलगाववादी ने कहा कि आज बंद नहीं होगा, लगातार बंद। ये 26 वर्ष में पहली बार है कि कश्मीर में 11 सप्ताह तक लगातार बिना ब्रेक के बंद रहा हो। अब ऐसा है कि किलिंग्स में जब थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, किलिंग्स बंद हो जाती हैं तो थोड़े से हालात सामान्य हो जाते हैं, हालांकि कारोबारी जो व्यापारी गतिविधियां हैं वो बहाल नहीं होती हैं, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, बैंक्स बंद है, पेट्रोल पंप्स बंद है, और किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं है। लेकिन जब ये किलिंग्स हो जाती हैं तो उसके बाद पथराव होता है, प्रदर्शन होते हैं, और प्रदर्शनों के विरुद्ध जब सुरक्षा बल कार्रवाई करते हैं तो उसमें कई लोग घायल हो जाते हैं, घायलों में से किसी की मौत हो जाती है, और फिर जो है हालात तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल बना हुआ है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए प्रशासन हर स्तर पर इस वक्त प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है।
ये थे श्रीनगर से पीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये बीबीसी है, आप नमस्कार भारत सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। आइए देखते हैं भारतीय समाचार पत्रों में किन खबरों को स्थान दिया गया है। समाचार पत्रों के साथ हैं मानसी दास।
सबसे पहले बात पहले पन्ने की बड़ी सुर्खियों की। लगभग सभी अखबारों ने उड़ी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान को दिए संदेश को पहले पन्ने पर ऊपर जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने मोदी की तस्वीर के साथ लिखा, उड़ी को हम नहीं भूलेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने भी मोदी की तस्वीर के साथ लिखा, चलिए युद्ध करते हैं बेरोजगारी और गरीबी से, देखें कौन जीतता है। पायोनियर ने मोदी का बयान छापा, हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान चरमपंथ। जनसत्ता ने लिखा, आतंक के आकाओं का लिखा हुक्म पढ़ते हैं पाक हुक्मरान। दैनिक भास्कर ने कश्मीर में किन हालातों में भारतीय सैनिक तैनात हैं इस पर रिपोर्ट छापी है। अब अन्य खबरों की बात करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार गुजरात के बनासकांठा जिले में एक गांव में एक मृत गाय का कंकाल दूर फेंकने से मना करने पर एक गर्भवती दलित महिला और उसके परिवार को लोगों ने बुरी तरह से पीटा है। स्थानीय पुलिस के पास FIR में कहा गया है कि दलित परिवार को शुक्रवार की रात गाय का कंकाल दूर फेंकने के लिए कहा गया था और परिवार ने कहा था कि ये काम वे अगले दिन सुबह करेंगे। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के अनुसार खुले में शौच करने के मामले में पिटाई और बिजली के झटके दिए जाने के बाद एक युवक ने अच्छे इलाज के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। युवक के पिता का कहना है कि इस साल जुलाई में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला उनका बेटा घर लौट रहा था जब उसके पेट में दर्द हुआ था और वो एक शोरूम के पीछे शौच करने गया और इसके बाद शोरूम मालिक और उनके कुछ साथियों ने मारपीट की, बिजली के झटके दिए और बेहोशी की हालत में एक बस स्टैंड पर छोड़ दिया। पायोनियर में छपी एक खबर के अनुसार समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को चुनौती दी है कि उड़ी हमले का बदला लेने के लिए वो अपने सुइसाइड बॉम्बर यानी आत्मघाती हमलावर पाकिस्तान भेजें। राज्य में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम आजमी ने कहा कि पाकिस्तान के कलाकारों को धमकी देने की बजाय राज ठाकरे हिम्मत दिखाएं और आत्मघाती हमलावर पाकिस्तान भेजें, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो गढ़चिरौली और चंद्रपुर में माओवादियों का मुकाबला करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भेज दें।
बहुत बहुत धन्यवाद मानसी आपका। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड और समाजवादी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में एक मंच से चुनाव लड़ने के लिए पत्र लिखा है। जनता दल यूनाइटेड ने अजीत सिंह के इस प्रस्ताव पर सहमति दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जनता दल यूनाइटेड के साथ RLD के चुनावी गठबंधन करने की चर्चाएं पहले भी चल रही थी, लेकिन बीच में ये बातचीत टूट गई थी। अब एक बार फिर इस नए गठबंधन को लेकर चर्चा होने लगी है। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र समाजवादी रुझान वाली पार्टियों को एक बार फिर एक करने की कवायद अजीत सिंह ने शुरू की है। हालांकि कुछ समय पहले भी जनता दल यूनाइटेड RLD के बीच गठबंधन और विलय की खबरें आती रहीं, लेकिन बाद में ये दोनों संभावनाएं खारिज हो गईं। लेकिन अब खुद अजीत सिंह ने इसके लिए सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। जनता दल यूनाइटेड के नेता अजीत सिंह के इस प्रस्ताव का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जावेद रजा इसे लेकर बहुत आशान्वित नहीं दिखते।
अगर समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जिससे कोई बात करती है तो मुलायम सिंह जी उसमें किसी तरह से कोई पीछे चल आते, जो भी फैसला होगा वो प्रदेश के हित में देश के हित में होगा। सबसे अहम बात यह है कि गठबंधन से संबंधित जितने भी फैसले इस बात होना है किस पार्टी से नहीं होना है वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा।
अजीत सिंह ने नेताओं को लिखे पत्र में कहा है कि चौधरी चरण सिंह पिछड़ों और किसानों के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन आज वो लोग परेशान हैं। उन्होंने लिखा है कि जरूरत है कि सभी लोहिया और चौधरी चरण सिंह को मानने वाले एक मंच पर आकर साथ काम करें। अजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में इस एकजुटता को अमली जामा पहनाने की भी अपील की है। बताया जा रहा है कि आगामी 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर समाजवादी विचारधारा से जुड़े राजनीतिक दल एकजुट होंगे और शायद इस बारे में कोई फैसला करें। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बारे में कोई भी फैसला सिर्फ पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह ही करेंगे। पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद कहते हैं,
ये सारे लोग जो है, अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे वो तैयार भी होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनसे और दूसरे नेताओं से पिछले राउंड की कितनी बातें हुई और बाद में सब वार्ता फेल हो गई, तो मुझे लगता नहीं है। और राजनीति में कोई भी चीज प्रबंधन होती नहीं है, ये भी आप जानते हैं, तो अभी कुछ कहना मैं समझता हूँ मुश्किल है।
दरअसल जून महीने में ही राज्यसभा चुनाव के दौरान अजीत सिंह और मुलायम सिंह की मुलाकात हुई थी। उस वक्त मुलायम सिंह अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी का समाजवादी पार्टी में विलय चाहते थे, लेकिन इससे अजीत सिंह सहमत नहीं हुए और ये गठबंधन नहीं हो पाया। कुछ ऐसा ही उनका जनता दल यूनाइटेड के साथ भी हुआ। मौजूदा विधानसभा में अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी के कुल 8 विधायक हैं। बताया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर आरएलडी का अच्छा खासा प्रभाव है, इसलिए उनके प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी भी इनकार नहीं करना चाहती। लेकिन असली सवाल महागठबंधन को लेकर है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को लाने की भी कोशिश हो रही है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
अगले महीने भारत में विश्व कप कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है। न्यूज मेकर्स में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान अनूप कुमार से। उनसे बात कर रही हैं राखी शर्मा।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बीबीसी न्यूज मेकर्स पर। 7 अक्टूबर से अहमदाबाद में कबड्डी विश्व कप की शुरुआत हो रही है। भारतीय टीम के 14 सदस्यों की घोषणा की जा चुकी है और टीम की कमान एक बार फिर अनुभवी अनूप कुमार के हाथों में दी गई है। अनूप 2006 से भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं और हर स्तर की प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही है। तो बिना ज्यादा देर करते हुए स्वागत करते हैं अनूप कुमार का।
थैंक यू वेरी मच।
अनूप जी, 7 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, कबड्डी विश्व कप की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले तो ये बताइए, इस बार क्या खास है कबड्डी विश्व कप में, काफी बड़े स्तर पर हो रहा है?
देखिए, वर्ल्ड कप पहले हमारे 2 वर्ल्ड कप हो चुके हैं वैसे तो, पर ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप, ये एक बहुत बड़े लेवल पे वर्ल्ड कप हो रहा है और उससे बिल्कुल अलग हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप का प्रचार जो टीवी पे, जो पहले जो हमारे 2 वर्ल्ड कप हो टीवी पे, उनका टेलीकास्ट वगैरह कुछ नहीं था और अब की बार इसका पूरा लाइव टेलीकास्ट होगा, तो इसलिए काफी बड़े लेवल पे है।
अनूप, कप्तानी को लेकर बात करते हैं, आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है भारतीय टीम में खेलने का, लेकिन कप्तानी में देखें तो इस बार ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी क्योंकि लाइमलाइट में काफी रहने वाला है ये कबड्डी वर्ल्ड कप।
जी बिल्कुल, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बहुत ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले लीग में कैप्टनसी कर चुका हूँ, वैसे तो मैं इंडियन टीम की कैप्टनसी कर चुका हूँ, अभी जो हाल ही में साउथ एशियन गेम्स जो हुए थे इंडिया में गुवाहाटी में आसाम में, उसमें भी मैं कैप्टन था टीम का, पर वर्ल्ड कप की कैप्टनसी करना एक बहुत मुश्किल काम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, देश की टीम का प्रतिनिधित्व करना बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी एक उपलब्धि है ये कि मैं वर्ल्ड कप की जो टीम बनी है इसका मैं कैप्टन हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी है, पर फिर भी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अनूप, जो 14 खिलाड़ी चुने गए हैं आपको मिलाकर, किस तरह से देख रहे हैं टीम को, बैलेंस टीम नजर आ रही है, ये वो टीम है जो वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड कर पाएगी?
देखिए बिल्कुल बैलेंस टीम है, क्योंकि सभी खिलाड़ी अभी हिंदुस्तान के जो टॉप प्लेयर्स हैं 14, वो इस वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुए हैं और बिल्कुल बैलेंस टीम है ये, ऑफेंस की तरफ से भी डिफेंस की तरफ से भी। ऑफेंसर हमारे पास काफी अच्छे अच्छे हैं और डिफेंस में मेरे ख्याल से तकरीबन सभी साइडें दो दो हैं, ताकि एक अगर कोई अच्छा ना कर पाए तो उसको चेंज करके हम दूसरों को खिला सके, तो बहुत बैलेंस टीम है अब की बारी।
जो 11 और टीमें इस बार हिस्सा ले रही हैं उनमें कुछ टीमें नई हैं, जैसे पोलैंड हो गई, केन्या की टीम हो गई, लेकिन जिन टीमों के खिलाफ आप खेल चुके हैं उनमें सबसे कड़ा प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं अपना?
अब तक जो हम खेल चुके हैं एशियन गेम्स में, साउथ एशियन गेम्स में, इंडोर एशियन गेम्स, काफी टूर्नामेंट होते हैं हमारे, पर इनमें सबसे जो टफेस्ट टीम हमारे लिए है अभी तक वो है ईरान, क्योंकि ईरान से हमारा लास्ट जो एशियन गेम हुआ था उसमें काफ़ी टफ मुकाबला हमारा उनके साथ हुआ था, एशियन गेम में मात्र 2 पॉइंट से ही जीत पाए थे, तो वो एक अच्छी टीम है। उसके अलावा जो हमारा पहला मैच होने वाला है साउथ कोरिया के साथ, साउथ कोरिया भी काफ़ी अच्छी टीम है, उनका एक प्लेयर जैन कुंग ली है जो लीग में बहुत ही अच्छा खेला है, अच्छा रेडर है वो, रेडिंग बहुत अच्छी करता है, और उसके अलावा बांग्लादेश टीम है, और बाकी जो नई नई टीम है उनके बारे में इतना हमें पता नहीं, वो सब हम ग्राउंड पे देखेंगे बिल्कुल फेस टू फेस, वो कैसे खेलते हैं, क्या उनकी स्किल्स है, वो सब नया है हमारे लिए।
अनूप, एक नया अध्याय जुड़ गया था भारतीय कबड्डी में जब 2 साल पहले इसकी लीग की शुरुआत हुई थी, इन दो सालों में कबड्डी जहां पहुंच चुकी है, कितना बड़ा योगदान मानते हैं इस लीग का?
देखिए, लीग से पहले हमारे कबड्डी प्लेयर्स की इतनी पहचान नहीं थी, यहाँ तक कि इंटरनेशनल अगर कोई इवेंट होता था तो उसको भी लाइव कभी शायद दिखाया नहीं गया, कभी दिखाया तो थोड़ी बहुत क्लिपिंग दिखाई है बीच बीच में, और गेम दिखा दिए बीच में, कबड्डी दिखा दिया। पर ये लीग जो स्टार्ट हुई है हमारी, लीग के बाद स्टार ने इसका पूरा फॉलो किया, इसका ब्रॉडकास्टिंग काफ़ी अच्छा किया, और इसका जो लाइव ये स्टार स्पोर्ट्स पे और इस पे स्टार गोल्ड पे जो दिखाया, इससे पब्लिक को ये पता चलेगी कबड्डी भी कोई गेम है और इतना इंटरेस्टिंग गेम है। इसकी वजह से जो PKL हमारा स्टार्ट हुआ, उसी की वजह से कबड्डी आज इस स्तर पर पहुंच पाई है।
दोनों में खेलने का अपना अपना क्या मजा है? देश के लिए खेलना किस तरह से देखते हैं और लीग के लिए खेलना आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, लीग में खेलना एक अलग बात है। लीग में हम किसी भी मैच को किसी भी तरीके से खेल सकते हैं कि किसी मैच में हम लूज भी हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे साथ है, हमारे सामने है, हम उसमें फिर दोबारा से कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। पर इंटरनेशनल लेवल में ये बात है कि हम वहाँ पे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखा जाता है छोटी छोटी बातों का, कि कहीं भी किसी भी प्लेयर की गलती से हम मैच लूज ना हो जाएं, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान अगर हारता है तो उसमें फिर हमारे पास कुछ बचता ही नहीं। तो वहाँ पे खेलना अलग बात है, बहुत मुश्किल भी है, और लीग में खेलना इतनी कोई मुश्किल की बात नहीं है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस।
अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए।
थैंक यू वेरी मच।
भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान अनूप कुमार से बात कर रही थी राखी शर्मा। कानपुर टेस्ट में न्यूजीलैंड के मुकाबले भारत की स्थिति काफी मजबूत हो गई है, जबकि अभी भी दो दिनों का खेल बाकी है, और विवरण दे रहे हैं आदेश कुमार गुप्त।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन कल भारत बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गया। कल स्टंप के समय भारत ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए थे। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय 64 और चेतेश्वर पुजारा 50 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले कल न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी एक विकेट पर 152 रन से आगे शुरू की, लेकिन उसका पुलिंदा केवल 262 रन पर बंद गया। सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम ने 58 और कप्तान केन विलियमसन ने जोरदार 75 रन बनाए, लेकिन इनके पेविलियन लौटते ही न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। खासकर केन विलियमसन को ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने जिस अंदाज में बोल्ड किया, इसके बाद कमाल किया रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने अपने एक ही ओवर में मार्क क्रेक, इश सोडी और ट्रेंट बोल्ड को चलता किया। मैच समाप्त होने के बाद रविंद्र जडेजा ने माना कि टीम अपनी रणनीति पर खरी उतरी।
पहले सेशन में 4 विकेट गिरे, वही एक गेम चेंजिंग था, क्योंकि उनकी टीम में 2-3 ही जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जो लंबा लेके जा सकते, तो मेरे ख्याल से हमारा वही प्लान था कि ये जो विकेट जो खेल रहे थे उनको एक आउट करना है, तो उसके बाद सामने एंड से नए बैट्समैन के लिए इजी नहीं है, क्योंकि विकेट पे बॉल कोई कोई बॉल घूम रहा था, कोई सीधा जा रहा था, तो बस वही हमारा गेम प्लान था।
फिलहाल भारत के पास पहली पारी के आधार पर 56 रनों की मिली बढ़त के बाद कुल 215 रनों की बढ़त है और उसके 9 विकेट बाकी हैं। उधर भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा ने कल टोरे पैन पैसिफिक ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल वर्ग का खिताब अपने नाम किया।
और अब सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
नमस्कार भारत।
BBC समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केरल के कोझिकोड में BJP की रैली में पाकिस्तान की जनता के लिए संदेश दिया। केंद्रीय यूरोप और बालकान देशों के नेता वियना में यूरोप में आने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या के मुद्दे पर साझा समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया के विदेश मंत्री वलीद अल मुअल्लम ने कहा है कि चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में सरकारी सेना को सफलता मिल रही है। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में शहर शार्लोट में पुलिस ने एक काले व्यक्ति कीथ लेमोंट स्कॉट की विवादित मौत के मामले में अधिकारी के शरीर और कार पर लगे कैमरे का वीडियो जारी कर दिया है। वॉशिंगटन पुलिस ने सिएटल के नज़दीक एक मॉल में गोलीबारी करने वाले बंदूकधारी शख्स की तस्वीर जारी कर लोगों से उनके बारे में सूचना देने के लिए कहा है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।